ओम शांति। बरसात की मौसम में तपस्या करना अच्छा लगता है। प्रकृति भी खिली खिली और बाबा की याद से मन भी खिला खिला। सबको अच्छा लग रहा है? समय निकाल करके खास तपस्या के लिए आप सभी आए हैं। प्यारे बाबा ने संपूर्ण ज्ञान हमें दे दिया है, मिल गया ना? ये निश्चय है ना कि स्वयं भगवान ने हमें भक्ति का फल संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया है। अब हमें कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। भक्ति में हरेक ऋषि मुनियों ने, धर्म स्थापकों ने अपनी अपनी मतें दी, तो अनेक मतें हो गई। सत्य तो स्पष्ट हुआ ही नहीं, और ही बाबा कहते हैं सूत मुंज गया, उलझ गया। पर हम भाग्यशाली आत्माएं हैं, हमें बाबा का सत्य ज्ञान मिल गया। तैतीस वर्ष 36 से लेकर 69 तक, 68 तक बाबा ने साकार मुरलियों के माध्यम से मूल सत्य ज्ञान विस्तार से समझाया और व्यावहारिक जीवन की ऊंची धारणाएं हमें सिखाई। आज भी बाबा की कितनी अच्छी शिक्षाएं थी। बच्चा वो जो बाप का धंधा करे। बाबा का धंधा कौन सा है? पतितों को पावन बनाना, सांवरे को गोरा बनाना और खारे को मीठा बनाना। वो ही धंधा हमें भी करना है। छोटी छोटी मानव जीवन की मैनर्स क्या होती है, धारणाएं क्या होती है, वो बाबा ने हमें सिखाया। हम सभी भल कितने भी पढ़े लिखे अपने को बहुत बुद्धिशाली समझने वाले, हमें भी बाबा से कितना सीखने को मिला है। प्रैक्टिकल व्यावहारिक जीवन की मैनर्स और 69 से लेकर 2017 तक अव्यक्त वाणी हम सब ने सुनी, अव्यक्त बाप दादा की पालना मिली, अपनी संपूर्ण स्टेज से बाबा ने अव्यक्त वाणियां चलाई और हमें भी संपूर्ण बनने की हर विधि बताई। अवश्य आप सभी ने भी ये सारी अव्यक्त मुर्मियों का अध्ययन किया होगा, खजाना तो है ना सबके पास। हाँ, भले हम ज्ञान में बाद में आए पर अव्यक्त वाणियों का खजाना तो है। ऑनलाइन भी है, पुस्तक के रूप में भी है। ब्राह्मण से ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है वो हर बात बाबा ने सिखाई है। इसलिए प्यारे बाप दादा ने, क्योंकि उनको जो कहना था, समझाना था, सिखाना था, वो बाबा ने सिखा दिया, तो बाबा ने अपना पार्ट संपन्न कर लिया। हमारी दादियों ने हमें ऑलमोस्ट 69 के बाद से तो दादियां ही जवाबदार हो गई इस बेहद के यज्ञ को संभाला। सिर्फ ज्ञान योग की पालना की बात नहीं, प्रैक्टिकल भी इतने बड़े यज्ञ को संभाला और हमें पालना दी। बरसों से लगातार प्रोग्राम एक के बाद एक पूरा वर्ष चलते ही रहते, हजारों भाई बहने आते रहते खाते। कितना प्रबंध दादियों ने संभाला, यज्ञ को चलाया। अब वो पालना का कार्य भी ऑलमोस्ट संपन्न हो गया तो हमारी दादियां भी सब एडवांस पार्ट में चली गई। यज्ञ के आदि में जो 400 आदि रतन थे सब एडवांस में चले। अभी एक ही दादी हमारे बीच में, पता है ना सबको। अब आवश्यकता है कि सत्य तो मिल चुका है, अब अभ्यास की जरूरत, पुरुषार्थ की जरूरत है। और अगर लगन है, सिर्फ बातें नहीं, सच्चा लक्ष्य है कि हमें भी अपने आप को संपूर्ण बनाना है। हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? हाँ, लक्ष्मी नारायण बनना। हाँ, कोई पूछते हैं आप क्यों रोज पढ़ने जाते हो तो क्या लक्ष्य बताते हो? कि हमें मनुष्य से देवता बनना, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। पूछो अपने आप को, ये लक्ष्य पक्का है कि सिर्फ बात करनी है? प्रैक्टिकली लक्ष्य को हमने लक्षण के रूप में कहां तक धारण किया है। हम बच्चे ही तो बाबा के वारिस हैं, हम बच्चे ही तो बाबा के राइट हैंड हैं। तो बाबा की आशाओं को कौन पूरा करेगा? हाँ, हम ही पूरा करेंगे ना। बाबा को प्रत्यक्ष कौन करेगा? हम ही करेंगे या दूसरे कोई आएंगे? हम ही करेंगे ना। हमने बाबा से प्यार पाया, हमने बाबा से पढ़ाई की, हमने बाबा से पालना ली, तो बाबा की प्रत्यक्षता कौन करेगा? हम ही करेंगे ना। बाप समान बनेंगे तो करेंगे ना। कोई बच्चा बिल्कुल बाप जैसा दिखता है तो क्या कहते? अरे भाई, ये तो बिल्कुल इसका अवतार लग रहा है। हा? जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसे ही कहते हैं ना। जैसा रचयिता ऐसी रचना। तो बाबा के समान बनेंगे तो हमारे चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसलिए पक्का लक्ष्य बना लो कि हमें थोड़ा बहुत आधा अधूरा नहीं बनना है, कि ब्राह्मण बनकर ही खुश है। फरिश्ता ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो देवता, बनना है ना हमें। लक्ष्य को सिद्ध करना है और समय से पहले, विनाश से पहले। अंत में तो चारों ओर हाहाकार होगा, उस समय पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कहीं सोचते हैं ना कि विनाश होगा तब बन जाएंगे, अंत में बन जाएंगे। अंत में कोई नहीं बन सकेगा। अंत में चारों ओर इतनी हलचल हाहाकार होगा कि पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। अभी से किए हुए पुरुषार्थ से बनाई हुई स्थिति अंत में काम आएगी। अंत में स्थिति नहीं बना सकेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं, अंत को बुद्धि में रख अभी पुरुषार्थ, अभी अपनी अवस्था बनानी। इसलिए अगर कोई ये सोच रहे हैं कि अंत में बन जाएंगे तो वो जाग जाए। अभी स्थिति बनाने का समय, अभी जागने का समय है। भल बाबा ने जगा दिया, सत्य ज्ञान मिल गया, फिर भी वापस थोड़ा बहुत सो जाते हैं निंद्रा में। बन जाएंगे, देखेंगे, बन जाएंगे, कौन बना है। ऐसे नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं ना, खुद लक्ष्य पक्का करो, मुझे बनना है। कोई बने न बने, क्या करे वो जाने, हमें दूसरों को नहीं देखना। आपस में एक दो को देख के नहीं चलना है। अभी भी एक मुरली में था ना कि औरों को देख कर और अपना पुरुषार्थ तीव्र बनाओ। मुझे भी इतनी सेवा करनी है, इसलिए बाबा कहते हैं ना, महारथी को देखो, बाबा मम्मा को फॉलो करो, कमजोर को नहीं देखना है। और देखने की बात ही नहीं, अपने आप में, अपने पुरुषार्थ में, अपनी सेवा में इतने बिजी रहें, हमें दूसरों को देखने की फुर्सत ही ना। दूसरों को क्यों हम देखते हैं? बाबा के साथ ऐसा सौदा किया है क्या कि और बनेंगे तो मैं बनूंगा? ऐसा सौदा किया है किसी ने? नहीं, हमने अपने विवेक से बाबा को पहचाना है, अपनी लगन से हम ज्ञान में चल रहे हैं। दूसरों के आधार पर हम थोड़ी चल रहे हैं। इसलिए बाबा को देखना है और अपने आप को देखना है। बाबा क्या कहते हैं और मुझे क्या करना है, बस। ये अज्ञान काल में, भक्ति में, द्वापर युग में खुद को भूल गए, स्व में स्थित नहीं रहे, तो आदत पड़ गई दूसरों को देखने की, दूसरों को देखने की। पर ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है, बाबा को देखो, अपने आप को देखो। बाबा ने इस योगी जीवन में पहला पाठ कौन सा पढ़ाया हमें? कौन सा पढ़ाया? स्व में स्थित होने। हमारा पहला पुरुषार्थ है अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, क्योंकि द्वापर से पहली भूल यही कि अपने आप को भूल गए। बाबा कहते हैं ना, सबसे पहली भूल कौन सी की? खुद को ही भूल गए। अब जो खुद को भूल जाएगा, खुद का ही अता पता बुद्धि में नहीं, तो बाकी सब कुछ भूल जाएगा ना। जब खुद का ही भान नहीं है, कोई पागल होता है, अपना ही होश नहीं है, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है ना। तो पहली भूल अपने आप को भूलने की। इसलिए सबसे पहली हमारी तपस्या है आत्म स्वरूप में स्थित होना। तपस्या करने आए हो ना, कौन सी तपस्या करनी? यहां कोई हठ दमन की तपस्या तो है नहीं, कोई रटने जपने की तपस्या तो है नहीं। हमारी तपस्या है स्मृति स्वरूप बनना, अवेयरनेस, जागृति, मैं कौन हूं बार बार रियलाइज करना, ये तपस्या। आत्मा का ज्ञान मिलने मात्र से आत्माभिमानी नहीं बन जाते, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमान में रहे। इस देह अभिमान को मिटाने के लिए आत्म स्मृति का अभ्यास भी इतना ही चाहिए। मुरली में भी सुनते हो ना, ब्रह्मा बाबा अभ्यास करते थे आत्मस्मृति। इसलिए मुरली में आता है ना, बाप इन आंखों से बच्चों को देखते हैं, तुम बच्चे कान द्वारा सुनते हो। ये मन ही मन अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं और शरीर से अलग, ये पहला अभ्यास। सिर्फ मैं आत्मा हूं इतना नहीं, शरीर से अलग, जो देखने में आ रहा है मैं ये शरीर नहीं हूं, बार बार महसूस कर। शरीर मिट्टी है, तत्व है, मैं आत्मा शक्ति हूं, ज्योति बिंदु, ये रियलाइज करना। सिर्फ रिवाइज भी नहीं, हमें शांति से बैठकर ये रियलाइज करना। बाबा कहते हैं ना, लंबे काल का अभ्यास होगा तो डिटैचमेंट आएंगी, क्योंकि जितना शरीर भान से में फंसते हैं, देह से अटैच होते हैं, तो ये पहली साधना ही नहीं कर सके। हमारी पहली तपस्या, पहली साधना है खुद को शरीर से अलग आत्मा समझना। बाबा कहते हैं ना, देखते हुए भी नहीं देखना, इन आंखों से तो स्थूल शरीर ही देखने में आएगा, लेकिन मुझे स्मृति क्या रखनी है, मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हर एक आत्मा, अपने को डिटैच करते रहो। तो बाबा कहते हैं अशरीरी बन सकेंगे, अंत में कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं ना, इतनी याद की प्रैक्टिस करो, अंत में एक बाबा याद आए। चाहते हो ना सभी, जीवन भर ज्ञान योग हम कर रहे हैं, हमारा पक्का लक्ष्य रहे बस अंत में और किसी की याद ना है। अंत में वो ही याद आएगा जो जीवन भर याद किया होगा, समझ जाओ। ऐसे ही भगवान याद नहीं आएगा। कहते हैं ना, जो अंतिम श्वास पर होते हैं, कान में गीता सुनाते हैं, भगवान की याद दिलाते हैं, तो भी याद नहीं आती, क्योंकि जीवन भर याद किया होगा तो अंत में बाबा याद आएगा। अगर हमारी लगन देहधारी से लगी हुई है, अगर देहधारी के याद और प्यार में अभी भी डुबके लगाते हैं, तो बाबा कैसे याद आएगा। इसलिए अपने आप को पक्का करा दो, कोई देहधारी से अटैच नहीं होना। बाबा ने हमें समझाया है ना कि किसी भी देहधारी की याद से कोई प्राप्ति नहीं, आत्मा का कोई कल्याण नहीं। इतनी नंबर वन आदि पिता ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं इसको भी याद नहीं कर रहा है। तो और देहधारी को याद करने का तो सवाल ही नहीं है ना। तो ये खुद खुद को समझाओ। बाबा मुरली में हमें समझाते हैं, पर हम खुद खुद को नहीं समझाएंगे तब तक ये धारणा नहीं होगी। ये खुद खुद के पीछे मेहनत करनी कि कोई देहधारी में फंसना नहीं, लक्ष्य अशरीरी बनने का है, खुद के देह को भूलना है। तो और देहधारी को याद करने की बात ही नहीं है ना। फिर वो देहधारी बच्चा है, युवा है या बूढ़ा है, ज्ञानी है या अज्ञानी है, कोई देहधारी में बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि कोई भी आत्मा अभी संपूर्ण नहीं। आज भी बाबा ने कहा ना, पुराने मित्र संबंधी, पुरानी दुनिया में मोह नहीं रखना है। हमें पूरा बाबा का बनना है। हमारी अंतर की लगन बाबा से लगी हो, निराकार की याद से ही निराकारी बन सके। शरीरधारी कोई भी हो, देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो, कोई भी मनुष्यात्मा हो, देहधारी की याद देहाभिमान में लाने वाली। इसलिए हम योग डायरेक्ट शिव बाबा से लगे। अशरीरी बनना है तो जीवन में अनासक्ति चाहिए और पवित्रता, ये दो धारणाएं बहुत पक्की चाहिए। क्योंकि खुद के या किसी के भी नाम रूप में फंसना अपवित्रता है। संडे की अव्यक्तवाणी में सुना होगा ना, बाबा ने कहा था, थोड़ी भी अपवित्रता है तो संपन्न नहीं बन सकेंगे। अपवित्रता माना दैहिक आकर्षण। बाबा ने कहा ना, कर्म में कोई भी देह का आकर्षण नहीं और टचिंग नहीं, हाथ नहीं लगाना। मनसा में भी कोई के देह को टच नहीं करना, इतनी ऊंची पवित्रता बाबा हमें सिखाते। तभी हम सहज देहभान से न्यारे अशरीरी हो सकेंगे। हमारी अंतिम गति अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, वही पुरुषार्थ तो बाबा सिखाते। देखो, बाबा के बने विकारों के मोटे स्वरूप, कर्म में विकार जो आ जाते थे उस पर हम विजयी बन गए। पवित्रता ब्रह्मचर्य की धारणा से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। पवित्रता नहीं तो योगी भी नहीं बन सकते। शुद्ध बुद्धि ही बाबा से लग सकते। भक्ति में भी कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। बुद्धि में या राम रह सकते हैं या काम रह सकता है। हम बाबा के बने हैं, हमने भोग मार्ग छोड़ दिया है, हम सभी ने योग मार्ग अपनाया है। रोज खुद को याद करो। इसलिए संगम युग भगवान से प्यार करने का युग है, ये देहधारी से प्यार करने का ये युग नहीं। ये पक्का रखो, संगम युग भगवान से प्यार करने का समय है। इसलिए जो कुछ अपवित्र था, असत्य था, असार था, उससे बाबा ने हमें मुक्त किया। ज्ञान नहीं था तो जीवन क्या था? विकारी था, विकारों में डुबके लगाते रहते थे। अब बाबा ने हमें आत्मा आत्मा, भाई भाई का पाठ पढ़ाया। इसलिए देह के मित्र संबंधियों के प्रति भी आत्मदृष्टि। बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी। बाबा लिखते थे, जो परिवार के संबंधी थे बाबा लिखते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा बाबा की धर्म पत्नी का नाम, नारायण आत्मा है, बाबा के बेटे का नाम नारायण था, राधिका आत्मा है, बाबा की पुत्र वधू का नाम राधिका थे। तो बाबा आत्मा का पाठ ऐसे पक्का करते थे। देह संबंध की दृष्टि से अब हमें नहीं देखना। तो सभी अपनी डायरी खोलो और लिखो अपने परिवार का। बच्चा आत्मा है, बेटी आत्मा है, पत्नी आत्मा है, पति आत्मा है, सास आत्मा है, माँ बाप आत्मा है। लिखो, ये पाठ पक्का करना है। थोड़ा भी दैहिक दृष्टि नहीं, जितना देहधारी से अटैच रहेंगे आत्मा भारी रहेगी। हम उड़ नहीं सकेंगे, डिटैच नहीं हो सकेंगे। जहां अटैचमेंट होगा बुद्धि वहां भटकेगी। बाबा में एकाग्र नहीं रहे। तो ये बैकग्राउंड प्रैक्टिकल लाइफ का तैयार करना होता है, तब हम तपस्वी बन सकते। बाबा कहते हैं ना, योग को तपस्या का रूप दो, शक्तिशाली लाइट माइट एकाग्रता वाला योग चाहिए, तो तपस्या कहा जाए। तपस्या माना लक्ष्य पूर्वक दृढ़ता से योग करना, उसको तपस्या कहते हैं। क्योंकि शक्तिशाली योग से पापों का बोझ उतारना है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ आत्मा में है, तमो प्रधान संस्कारों के रूप में। हमें योग से पूर्ण शुद्ध बनना है। विकार का अंश भी ना रहे। बाबा कहते इसलिए ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू हुआ। हमारी मंजिल है संपूर्ण निर्विकारी बनना। इसलिए रोज बाबा आत्माभिमानी बनने की बात करते हैं। ये कॉमन पॉइंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करनी है और अभ्यास करना है। आज भी बाबा ने कहा ना, अपने आप को देखो, पतितों को पावन बनाने का धंधा करते हो, कोई विकार तो नहीं है, नष्टो मोहा बने हो, आप समान कितनों को बना। तो ये हमें रोज खुद को देखना है। कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है। अब नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। देवता माना सतयुग में क्या होगा, नेचुरल आत्माभिमानी। द्वापर कलयुग में नेचुरल देह अभिमान, पर संगम युग में इतना अभ्यास करना है आत्माभिमानी बनने का, जो सतयुग में हम नेचुरल आत्माभिमानी रहे। बाबा तो कहते हैं कि आपका ये साधारण स्वरूप छिप जाए, आपका ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। इतनी आत्मस्मृति में रहे कि वो तेज अनुभव हो सब। जैसे अंधेरे में दूर से मोटर कार आती है तो क्या दिखाई देता है, लाइट ही दिखाई देती, वो कार छिप जाती है। उनका फोकसिंग इतना पावरफुल होता है कि दूर से लगेगा लाइट आ रही। ऐसे बाबा कहते हैं, इतनी आत्मस्मृति में रहो जो वो तेज दिखाई दे, किसी के हमारे देह में बुद्धि न जाए। हमारी बुद्धि देह में होंगी तो औरों की भी हमारे शरीर में बुद्धि जाएगी। जितना आत्मस्मृति में रहेंगे, आत्मस्थिति में रहेंगे, तो किसी की नजर शरीर में नहीं जाएगी। हमें देखकर बाबा याद आएगा, हमें देखकर वो आत्माभिमानी बन जाएंगे, हमें देखकर अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। इतना हमें आत्मस्मृति का अभ्यास। कोई इंद्रिय रसों में भी नहीं डूबना। बाबा कहते हैं और कोई गृहस्थी नहीं है, परंतु इंद्रिय रसों की गृहस्थी सबको है। देखने का रस, बाबा कहते हैं मार्केट में जाते हैं इधर उधर कि क्यों देखते? होर्डिंग्स बोर्डिंग्स देखने में और फिर रस में डूब जाते। नहीं, बाबा की याद में सीधे जाओ, सीधे आओ। कौन कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, वो ही देखते रहते, उसमें ही रस है। हमारा कोई कनेक्शन भी नहीं और कोई उठ के जाएगा तो हमारी गर्दन भी घूम जाती। क्यों, ये क्यों आदत पड़ी हुई? अभी भी दूसरों में बुद्धि है। सुनने का रस, कौन क्या बात कर रहे हैं, तेरी मेरी, आज भी बाबा ने कहा ना, ये ऐसा है वैसा है, वहां ये हुआ वो हुआ, सेंटर में ऐसा हुआ, वो दीदी ऐसी, ये दीदी ऐसी, ये व्यर्थ बातों में हम क्यों जा रहे? ये सुनने का रस, जैसे दुनिया भर की पंचायत मुझे पता होनी चाहिए। क्यों? कोई एक का मोबाइल बजेगा और सबके मुंह उधर हो जाएंगे, आपका क्या जाता है? क्यों उस तरफ आपकी बुद्धि जाती? जिसका बजा होगा वो जाने। वैसे तो योगी आत्माओं का मोबाइल बजना ही नहीं चाहिए क्लास में, क्यों पता नहीं है खुद को कि हम योग के? हमारे लोगों को भी पता होना चाहिए कि अभी ये फोन नहीं उठाएंगे, ये इनके योग का टाइम है, इनके क्लास का टाइम है। सुनने में बुद्धि जाती, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें। पहले लौकिक वालों की करते थे, अब यहां आपस में एक दो की करते। हमें यहां भी डिटैच रहना, अलौकिक परिवार में अलौकिकता से चलना। बातें करने का रस, घर में अकेले हैं, कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हैं, याद में बैठो, पर राह देखेंगे कि कोई आवे तो बातें करे। बातें करने का रस है। कईयों को भट्ठी में घबराहट होती है क्योंकि साइलेंस में रहना होता है ना, परेशान हो जाते क्योंकि बोल बोल करने की आदत पड़ी। खाने का रस, खाऊं खाऊं करता रहता है, आज ये खाएंगे आज वो खाएंगे, आज ये बनाएंगे आज वो बनाएंगे। बाबा ने क्यों हमारा जीवन सादा स्वच्छ सात्विक बनाया? ताकि हम इन रसों से निकले। भक्ति में भी ये लक्ष्य रहता है कि रस और स्वाद से बुद्धि निकाले और भगवान को याद करे, पर वो लक्ष्य तो सिद्ध हुआ है नहीं? ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो ढूंढते रहते हैं क्या खाएं, क्या खा सकते हैं उपवास में, तो 500 चीजें बनाने लगे, कोई रस स्वाद छूटा ही नहीं। पर देखो बाबा के बने अन्न शुद्धि का नियम जीवन भर धारण हो गए कि हमें अशुद्ध भोजन कहीं भी नहीं खाना है। किसी को घूमने का रस, कोरोना में बहुत परेशान हो गए क्योंकि कहीं जाना ही नहीं था, और आदत होती है कोई काम नहीं होगा तो भी आता हूं बाजार जाके, ऐसे ही कोई कुछ खरीदना नहीं तो भी शॉपिंग में निकल पड़ेंगे, क्योंकि घूमने की आदत पड़ गई। पहनने का, सजने का रस, तो देखो बुद्धि कहां कहां आसक्त है, वहां सबसे बुद्धि निकाल ली तो डिटैच, और शरीरी बनना मानना डिटैच हो जाए, पर बुद्धि निकलेगी नहीं। इसलिए योग में बैठते हैं पर ऊपर जाते ही नहीं है, यहां ही घूमते रहते हैं बुद्धि से। लाल लाइट से सफेद लाइट हुई नहीं और हिलने लग जाते, क्योंकि उड़े ही नहीं थे, ऊपर गए ही नहीं थे ना, यहां ही घूम रहे थे। खुद को देखेंगे तो पता चलेगा, और अटेंशन देना है। अब हमें जाग जाना चाहिए, टाइम तो पूरा हो गया, हम कब अपने आप को बनाएंगे। बे शांति से, प्यार से, घर असली घर में जाएं, बाबा के सामने बैठें, बाबा से प्यार से बातें करें। पर कहते हैं बस दो मिनट में हम नीचे आ जाते क्योंकि बुद्धि में दुनिया भर की बातें भरी हुई है। इसलिए योग माना डिटैच हो जाना, सेवा सहज लगती है क्योंकि सबसे मिलकर करना, पर योग में डिटैच, अकेला मैं और बाबा। ये रोज रोज बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम अनुभूति करेंगे कि मैं देह में रहते भी देह से अलग। कोई देहधारियों में बुद्धि नहीं जाए। आज भी बाबा ने कहा ना, एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ो। ताकि और कोई संबंध खींचे नहीं, महसूस करो केवल बाबा की याद मुझ आत्मा को शुद्ध बनाने वाली है, शक्तिशाली बनाने वाली। और आत्माओं से तो बुद्धि भटक जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। आत्मा को बिल्कुल शुद्ध सोना बनना है, बोझ होगा तो उठ नहीं सके, पापों का बोझ, जन्म जन्मांतर से किए हुए पापों को योग बल से भस्म करना है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि अब नए कोई पाप मुझे नहीं करने, ऑलरेडी किए हुए सिर पर बोझ है और योग से शुद्ध बनना है। तो ये खुद से पक्का कर लो, मुझे नए कोई पाप नहीं करने। इतना रोज बाबा हमें समझाते हैं तो भी कितने विकर्म, व्यर्थ कर्म, पाप कर्म हम करते रहते। बाबा कहते मनसा में कितना भी माया के तूफान आवे, कर्मेंद्रिय से मुझे पाप नहीं करना, खुद पर कंट्रोल रखना और उसके लिए खुद खुद से बात करो। अब हमारा लक्ष्य क्या है, अब मैं कौन हूं, मैं किसकी बनी हूं, अब मेरा काम क्या है, खुद को समझाना है। ये पुरुषार्थ तो खुद को ही करना होगा ना। ज्ञानी तू आत्मा बनकर अभी भी विकर्म करेंगे तो 100 गुना हिसाब बन जाएगा, वो चुकाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो व्यक्तिगत हरेक को दृढ़ता कर दिए ना, बाबा ने समझा दिया, पर मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है, विकर्मा जीत बनना है, तो मुझे लक्ष्य बनाना है। मुरली सुनी और चले गए, बस सारे दिन में क्या अटेंशन में रख, लक्ष्य होगा अपने आप अटेंशन रहेगा, लक्ष्य होगा खुद को ही समझ में आएगा मुझे ऐसे कर्म नहीं करने। चलो ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप किए, देखो अज्ञान काल को, ज्ञान के पहले की जीवन को देखो, आंखों से गलत इशारे करके भी पाप किए हैं, नाक चढ़ा के भी पाप किए हैं, मुंह बिगाड़ के भी पाप किए, हाथों से तो किए ही किए। अब मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना, खुद ये लक्ष्य रख लो, मुझे योग बल से हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाना। भगवान हमारे पीछे इतनी मेहनत करे और हम अटेंशन ही ना दे, अब बाबा हम बच्चों से कौन सा सहयोग चाहते, हमारी संपन्न स्थिति का सहयोग चाहते। इसलिए अंतर्मुखी बनकर अपने आप से पूछो क्या लक्ष्य है मेरा, और अपने हाथ से लिखो डायरी में, अंतर्मुखी बनो, अपने आप से पूछो सच में मेरा क्या लक्ष्य है। बाबा मिला, सत्य ज्ञान मिला, इतना पवित्र यज्ञ मिला, इतनी महान पवित्र दादियां मिली, अब मुझे क्या करना है, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे भी ऐसा महान बनना है या बस थोड़ा बहुत करना है। लक्ष्य होगा दृढ़ता रहेगी। रोज बाबा के साथ बात करो, मुझे बाबा बनना ही है, बाबा मुझे आप जैसा बनना है। फिर कोई भगवान नहीं मिलना है, पूरे ड्रामा में यही अंतिम जन्म है, जब बाबा मिलते हैं और ये संगम का कल्याणकारी समय है। फिर तो सतयुग में आएंगे, उतरना शुरू हो जाएगी। यही चढ़ती कला का समय, अपने आप को जितना ऊंचा, जितना महान, जितना पवित्र बनाना चाहे अभी ही बना सकते। इतना ऊंचा बाबा, इतना सत्य ज्ञान, तो मुझे भी तो इतना महान बनना है। तो लिखो डायरी में, मेरा क्या लक्ष्य है। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। मुझे देह भान से, देह आकर्षणों से, दुनियावी आसक्तियों से निकल जाना है, ऊपर उठ जाना है। चलो सभी खड़े हो जाओ। 5 संकल्प मैं देती हूं, पक्का करना है। और रोज साइलेंस में बैठकर खुद खुद को रिवाइज कराना, रियलाइज कराना है। लाल लाइट करें। पहला संकल्प, खुद को याद कराओ, महसूस कराओ, मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में पूर्ण शुद्ध आत्मा हूं। सर्वशक्तिमान बाबा की संतान हूं। मैं सत्य हूं, पवित्र हूं, शुद्ध हूं। मुझे पुनः अपने असली शुद्ध पावन स्वरूप में स्थित होना है। राइट साइड घूम जाइए, दूसरा संकल्प, मेरा वर्तमान जीवन पवित्र ब्राह्मण जीवन है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा। इस कलियुगी पतित दुनिया के बीच मैं कमल फूल समान पवित्र आत्मा हूं। आत्मस्मृति का तिलक मैंने लगाया हुआ है। मन वचन कर्म की पवित्रता की जनेव मैंने धारण की है। राइट साइड घूम जाए, इस अंतिम जन्म में जो भी लौकिक अलौकिक पार्ट मुझे मिला है बाबा की श्रीमत पर निमित्त बनकर प्ले करना है। हम गृहस्थी नहीं ट्रस्टी हैं। बाबा मालिक है, हम निमित्त हैं। निमित्त भाव निर्माण भावना से पार्ट प्ले करना है। राइट साइड घूम जाए। चौथा संकल्प, संगम युग के अंतिम चरण में मैं तपस्वी आत्मा हूं। हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय में आत्माभिमानीता का तेज धारण करना है। मैं तपस्वी हूं। राइट साइड घूम जाएं। बैठ जाएं। पांचवा संकल्प, मुझे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनना है। और अशरीरी बन निराकारी स्थिति से असली घर परमधाम जाना है। ओम